मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 5 जनवरी 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में फिर से हम लोग बात करेंगे दंगल फिल्म को ही आधार बनाकर। और सच पूछिए तो मैं समझता हूं कि आज की इस बात को दंगल फिल्म की आखिरी बात हमें घोषित कर देनी चाहिए। कल से फिर हम नए किसी विषय पर बात करेंगे और किस नए विषय पर बात की जाए इसके लिए मैं आप लोगों से विषय आमंत्रित करता हूं। मित्रों आज मैं दंगल फिल्म के खासकर उस प्रसंग को लेना चाहूंगा जो वास्तव में बहुत मुझे मार्मिक लगा था, बहुत ही मार्मिक प्रसंग था वो। हालांकि है वो बहुत ही सामान्य किस्म का प्रसंग, सामान्य इसलिए क्योंकि हम सब के रोजाना की जिंदगी में ये सब चीजें होती रहती हैं और हम सब देखते भी रहते हैं। याद कीजिए मित्रों, शुरुआत की ही लगभग बात है, जबकि एक लड़की की शादी होती रहती है, एक लड़की की शादी हो रही है और उस शादी में ये दोनों बच्चियां जो बाद में रेसलर बनती हैं बबीता और गीता, किसी तरह से बच बुचा करके अपने पिता की निगाह से उस शादी में पहुंच जाती हैं। और आप देखिए कि चूंकि वो लड़कियां हैं तो उनमें एक नारीगत जो भावनाएं होती हैं, लड़कीगत जो भावनाएं होनी भी चाहिए वो हैं, किस तरह से वो बिंदी लगाती हैं, थोड़ा सा सजती हैं और जाके शादी में शामिल हो जाती हैं। और वहां फिर संयोग से उनका मुकाबला उनके पिता से हो जाता है। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है मित्रों। इससे पहले आप देख रहे हैं कि ये दोनों बच्चियां, दोनों लड़कियां अपने पिता के यूं कह लीजिए कि कुछ तानाशाही व्यवहार अंदाज से कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। और हम सबके साथ ऐसा ही होता है, हम परेशान होते ही हैं क्योंकि हमारी दृष्टि उतनी व्यापक नहीं होती है। हमारे जो मूल्यांकन का आधार होता है वो सिर्फ हमारी अपनी पसंदगी नापसंदगी होती है। हमें जो बातें पसंद आ रही हैं वे हमें अच्छी लगती हैं और जो नापसंद आ रही हैं वो हमें बुरी लगती हैं, चाहे वो हमारे हित में कितनी ही क्यों ना हो। दोस्तों अभी तक ये दोनों लड़कियां अपने पिता से एक यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं चिढ़ते थे, खौफ खाते थे, नाराज से थे। लेकिन ये जो लड़की है जिसकी शादी हो रही है, उस प्रसंग को याद कीजिए कि शादी के तुरंत बाद ये दोनों बच्चियां जो बबीता गीता है उनसे एक बात कहती है, बड़ी मार्मिक बात कहती है। जिसने भी डायलॉग लिखा है कमाल किया है मित्रों। कहते हैं कि देखो तुम लोगों को मैं अब अपने शब्दों में बता रहा हूं, उनके शब्द नहीं है, कि देखो मेरे पिता ने, यहां तो होता यही है कि लड़की 14 साल की हुई और उसकी किसी के साथ भी शादी करके और उससे छुटकारा पा लो, लेकिन तुम्हारे पिता कम से कम तुमको कुछ समझ तो रहे हैं, तुमको कम से कम इंसान तो समझ रहे हैं। वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबसे इतना झगड़ा मोल ले रहे हैं, तो सोच करके देखो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे पिता की निगाह में, तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे पिता के निगाह में कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। और मित्रों जैसे ही ये दोनों लड़कियां ये वाक्य सुनती हैं, आप देखिए कि जादू की तरह जैसे पलक झपकते कोई चीज हो जाती है, या कह लीजिए कि जिंदगी में जैसे कि कोई अचानक क्रांति घटित हो जाती है, या कि जब पहाड़ पर आप चलते रहते हैं तो अचानक यू टर्न आता है जिसे ब्लाइंड कर्व कहते हैं, वही उनकी जिंदगी में आता है। और अपने पिता के प्रति जो उनकी धारणा जो अब तक नकारात्मक थी एकदम से सकारात्मक हो जाती है। यस, ये तो इस गांव में केवल हमारे ही पिता है जो हमको इतनी अहमियत दे रहे हैं, हमारी छोटी छोटी चीजों का इतना ध्यान रख रहे हैं, भले वो हमें पसंद नहीं आ रही है क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, उसमें उनकी स्वतंत्रता उनकी स्वच्छंदता बाधित हो रही है, वो ट्रेडिशन से हटकर है, दूसरे लोगों की घूरती हुई आंखों का और चुभती हुई आवाजों का सामना करना पड़ रहा है, तो यह तो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मित्रों जब आपको अलग बनना पड़ता है, अगर अलग बनना है तो आप सबके हिसाब से तो नहीं बन सकते, अपने हिसाब से भी नहीं बन सकते। आप अलग केवल उस हिसाब से बन सकते हैं जिस हिसाब से अलग बना जाता है, वो आपसे एक अलग तरह की ही मांग करता है। दोस्तों अभी वो सीरियल आना बंद हो गया, लगभग 2 साल पहले की बात है, एक बहुत खूबसूरत सीरियल आया करता था महाराणा प्रताप, शायद 3 साल पहले टीवी पर आया करता था महाराणा प्रताप। उसमें खासकर महाराणा प्रताप के जो बचपन का जो काल है, जो उनके निर्माण का काल है, जिस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो ट्रेनिंग उनके गुरु के द्वारा दी जा रही हो, चाहे वह ट्रेनिंग उनके पिता के द्वारा दी जा रही हो, और यहां तक कि माता के द्वारा दी जा रही हो, वो बहुत अद्भुत हिस्सा है। मतलब तीनों के तीनों महाराणा प्रताप की ट्रेनिंग के मामले में कहीं समझौता ही नहीं करते, जो किया जाना चाहिए वह किया जाए, दैट्स ऑल। चाहे उससे महाराणा प्रताप उस छोटे से बच्चे को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, और उसी ने तो फिर महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया, इतिहास में अमर कर दिया। अदरवाइज बहुत से और भी हुए, राजा महाराजा प्रिंस हुए, किनको कौन कितना जानता है, और अगर जानते भी हैं तो इतिहास में केवल उल्लेख भर है। उनके प्रति श्रद्धा कितनों में है, कितनों की उसमें से प्रतिमाएं बन रही हैं, कौन कितने उसमें से जीवन की प्रेरणा बने हुए हैं, कितनों को हम पूज रहे हैं, उसमें से महाराणा प्रताप है। तो वो महाराणा प्रताप अंततः महाराणा प्रताप बने कैसे? अपने मन से नहीं, बल्कि उस मन से कि नहीं, मुझे तो यह करना ही चाहिए, किया ही जाना चाहिए। और मित्रों, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इस बात को नहीं समझ पाते। महाभारत का एक बड़ा खूबसूरत प्रसंग है। महाभारत का खूबसूरत प्रसंग यह है दोस्तों, आपको मालूम है कि जो अर्जुन है वो द्रोणाचार्य के प्रियतम शिष्य है। द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत प्यार करते थे और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे अश्वस्थामा। एक दिन अश्वस्थामा ने अपने पिता से यह प्रश्न किया कि आप मुझे भी पढ़ाते हैं, अर्जुन को भी पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, उस समय तो सिखाने की बात होती है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप अर्जुन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मुझ पर उतना ध्यान नहीं देते, जबकि मैं आपका पुत्र हूं। उस पर द्रोणाचार्य ने बहुत खूबसूरत उत्तर दिया था, बोले यही तो बात है कि तुम मेरे पुत्र हो और अर्जुन मेरा शिष्य है, तुम उस शिष्य के भाव को ले आओ, मैं तुम्हारे साथ भी वही करने लगूंगा। तो मित्रों, ये जो शिष्यत्व का भाव है ये बहुत बड़ा भाव है, और मुश्किल ये होती है कि जो सीखने वाला है, और सीखने वाला किसी भी उम्र में हो सकता है, मैं केवल स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, सीखना तो एक पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसकी बात मैंने कल की थी आप सबसे कि जब तक आप सीखने की प्रोसेस में रहते हैं आप जवान बने रहते हैं, कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, कब्र में पहुंच करके भी आप बूढ़े नहीं होंगे, अगर सीखने का भाव आपके अंदर है तो। तो मित्र, हम इस शिष्यत्व के भाव को मिस कर जाते हैं और एक तरह से अपने दिमाग में कस्टमर के भाव को लेकर के आते हैं कि ठीक है, हम इस इंस्टीट्यूट में इतनी फीस दे रहे हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये पढ़ाएं जी, कस्टमर का भाव। सीखने से तो आप वंचित हो जाएंगे, चीजें मिल जाएंगी आपको लेकिन सीखना नहीं हो पाएगा। अभी तो ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। आप देखिए, अभी गोपीचंद फुलेला जी का नाम आपने सुना है ओलंपिक के समय में, और पीवी सिंधु हमारे लिए सिल्वर मेडल लेकर के आई बैडमिंटन में। उस समय मैंने कुछ बातें भी की थी, उस पर ब्लॉग भी लिखा था एनडीटीवी पर, कि वो किस तरह के शिष्यत्व भाव में रह रही हैं। पीवी सिंधु अपना कुछ भी नहीं, ठीक वैसे ही जैसे कि आप नाव में यात्रा कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, सब कुछ आपने मल्लाह पर छोड़ दिया है, वो जहां ले जाएगा वहां पहुंचेंगे, डूबेंगे तो सही, उतरेंगे तो सही, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, जो कुछ भी है वो मल्लाह के हाथ में है। क्या सच में वो शिष्यत्व हमारे अंदर आ पाता है? और आप देखिए कि इसमें वो गुरु और पिता के रोल को दंगल फिल्म में बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया है। हो सकता है कि वो छोटा सा प्रसंग ज्यादातर दर्शकों से छूट गया हो, लेकिन वो भी बड़ा प्यारा और बड़ा मार्मिक प्रसंग है। मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रसंग जो केवल सेकंड भर के लिए आते हैं और आपके शरीर को रोमांचित करके चले जाते हैं, जैसे कि एक लहर आती है और गुजर जाती है। दोस्तों, वही पिता जो इतना खूंखार दिखाई देता है, और अब आप देखते हैं कि कितना खूंखार दिखाई देता है, कोई समझौता ही नहीं करता, और वही पिता एक दिन रात में अपनी सोई हुई बेटियों के पैरों को हल्के हल्के सहलाता है, दबाता है कि बेचारी थक गई होंगी। आप, मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरा शरीर रोमांचित हो गया है, ये पिता का भाव है। लेकिन वो जानता है कि ये अगर मैंने पिता का भाव ओपनली दिखाया तो इनके शिष्यत्व का भाव खत्म हो जाएगा, और जैसे शिष्यत्व का भाव खत्म हो जाएगा इनका सीखना गड़बड़ा जाएगा। तो वह पिता और पुत्र दोनों को बहुत ही संतुलित लेकर उनके साथ चलता है, और ये खूबी होती है। शिष्य क्या करता है, सीखने वाला क्या करता है। मित्रों, अगर मैं यहां शिष्य कह रहा हूं तो आप बिल्कुल स्टूडेंट के फॉर्म में मत लीजिएगा, मैं केवल सीखने की बात कर रहा हूं। जो हम जिंदगी भर शिष्य ही बने रहते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम सब जिंदगी भर शिष्य ही बने रहे। हाँ, जिसके लिए गुरु बन सकते हैं गुरु भी बन जाए और बाकी शिष्य भी बनते चले रहे, जिंदगी भर शिष्य बने रहे। शिष्य क्या करता है? शिष्य बहुत जल्दी स्प्लिट पर्सनालिटी का हो जाता है, अपने व्यक्तित्व को विभाजित कर देता है। देखिए, व्यक्ति को विभाजित करना दोस्तों अलग बात है और तार्किक होना अलग बात है। मैं गौतम बुद्ध के इस सिद्धांत का बहुत प्रबल समर्थक हूं कि अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, लॉजिकल बनो, अंधानुकरण मत करो, लॉजिकल बनो, चीजों के बारे में सोचो समझो और स्वीकार करने से पहले उस पर विचार करो। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं, विचार करना अलग बात है जो तार्किकता है, लेकिन विभाजित व्यक्तित्व तो अलग बात है। स्प्लिट पर्सनालिटी होती ज्यादातर स्टूडेंट्स की, 99.9% स्टूडेंट की पर्सनालिटी स्प्लिट होती है, और जो 0.1% स्टूडेंट होते हैं वही जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, और उनको समझ में नहीं आता है दूसरों को जो 99.9 रह गए हैं कि यार मेहनत तो हमने भी की, सब कुछ तो हमने भी किया, लेकिन हम रह क्यों गए। ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी है मित्रों, वो क्या होती है? वो आस्था में भी जीती है और भ्रम में भी जीती है। आप विश्वास भी करते हैं और अविश्वास भी करते हैं, दोनों चीजों के बीच में आप तैरते रहते हैं, सामने कुछ बने रहते हैं पीछे कुछ बन जाते हैं। ये स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, सामने हां पीछे ना, और ये केवल गुरु और शिष्य के ही व्यवहार में नहीं होता है। मैं तो एक आधार बना करके चल रहा हूं क्योंकि दंगल फिल्म से मैंने ये हिस्सा उठाया है, अदरवाइज स्प्लिट पर्सनालिटी तो हर जगह मौजूद रहती है। एक ही आदमी में न जाने कितने आदमी मौजूद रहते हैं, और फिर आप सोच करके देखिए कि अगर इस तरह से हमने अपने आप को ही विभाजित कर दिया है, हमने अपने आप को ही खंडित कर दिया है, या हम अपने आप में ही संपूर्ण नहीं हैं, तो मित्रों हमें एक संपूर्ण रिजल्ट कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? आपको कहीं न कहीं अपने को तो समेटना पड़ेगा। जब आप में संपूर्णता होगी तभी तो आपको एक संपूर्ण चीज मिलेगी, अदरवाइज अगर मैं खंडित हूं तो मुझे खंडित चीजें मिल रही हैं, और फिर मैं शिकायत करता हूं कि मुझे पूरा क्यों नहीं मिला। मैं समझ ही नहीं पाता, मैं मूल्यांकन ही अपना नहीं कर पाता कि वस्तुतः मैं खंडित व्यक्तित्व का हूं। और यही खंडित व्यक्तित्व का जो बड़ी वाली लड़की है वो पटियाला के स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ऑफिस में जाकर, वहां मैदान में जाकर के हो जाती है, और आप देखिए कि उस जैसे ही उसका व्यक्तित्व खंडित होता है, विखंडित होने लगती है, वो बिखरने लगती है। बाद में उसकी छोटी बहन आकर के फिर से उसको समेटती है, फिर से वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनती है, और जैसे ही व्यक्तित्व संपूर्ण बनती है सोना उसके हाथ में आ जाता है। तो मित्रों, ये दंगल फिल्म को लेकर के मैंने कुछ एपिसोड में आपसे बातें की हैं, अब मैं दंगल फिल्म पर बातचीत के दौर को यहीं समाप्त करता हूं। हां, यदि आप लोगों से मुझे कोई और इससे जुड़े कोई बहुत ही अच्छे सवाल मिले जो मुझे महसूस होगा कि नहीं ये चीज अधूरी रह गई है, तो डेफिनेटली मैं उसका स्वागत करता हूं। आप सब मुझे बताएं, हम उन पर भी आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।